नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली 3 अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की भी आधारशिला रखी। इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवर ब्रिज शामिल हैं।
बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इसे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैटामरान नौका का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने जयराम बाटी से बोडो गोपीनाथपुर होते हुए मायनापुर तक नई रेल लाइन तथा मायनापुर और जयराम बाटी के बीच नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनना भारत का प्रमुख लक्ष्य है। वे नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री की उपस्थिति में पिनाका निर्देशित रॉकेट की पहली खेप रवाना की गई। श्री सिंह ने कहा कि संयंत्र में विकसित पिनाका मिसाइलों का निर्यात शुरू हो चुका है और कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज से असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इंडिया स्किल्स 2025-26 की पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। 4 दिन की इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के कुशल युवा राष्ट्रीय मंच पर 26 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। पार्टी के रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवश्यक हुआ तो कल मतदान होगा और कल ही भाजपा के नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9 वर्षों में 62 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 2,09,421 स्वीकृत लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त का हस्तांतरण किया। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि ये गिरोह लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर धोखाधड़ी करता था। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद की ये तीसरी और पिछले एक दशक में भारत की 5वीं आधिकारिक यात्रा होगी। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। पुरुष क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने इंदौर में खेले गए एक दिवसीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे मैच में भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैच की श्रृंखला 21 जनवरी से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिम राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर का प्रकोप रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्किस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।